पिछले अध्याय में आपने देखा कि प्रियंका के कमरे में एक ट्रांसमीटर लगाया गया, रुचिका और सुधीर की शादी हुई और मानवी और वेद ने अतीत पर चर्चा की। इस अध्याय में सभी मुंबई लौटते हैं क्योंकि मेहरा परिवार रुचिका और सुधीर की रिसेप्शन का आयोजन करता है। अयान बदल गया है और जोया के साथ रुखसती चाहता है, लेकिन जोया को अतीत की यादें और अयान के प्रति संदेह है। मेहरा परिवार ने मानवी का गृह प्रवेश किया और उसे संपत्ति दी। रुचिका को भी उपहार दिए गए। अब नेक्स्ट, पिछले अध्याय में आपने देखा कि रमेश मेहरा प्रियंका के कमरे में गया, गौतम ने उसे ट्रैक किया और प्रियंका के कमरे में एक ट्रांसमीटर लगाया गया। रुचिका और सुधीर की शादी के बाद बातचीत हुई, मानवी और वेद ने अतीत पर चर्चा की। इस अध्याय में सभी मुंबई लौटते हैं। अयान बदला हुआ लगता है और जोया उसकी रुखसती के लिए उत्सुक है, लेकिन अतीत को लेकर चिंतित है। मेहरा परिवार रुचिका और मानवी का गृह प्रवेश करता है। मानवी को संपत्ति दी जाती है। वेदांत वहीं हाल में बैठा हुआ था। उसे वेद से बेहद जलन हो रही थी। वेद को हर चीज मिल रही थी, जबकि उसे रीना औलाद नहीं दे सकी थी। वहीं वेद के बारे में कहा जाता था कि वो कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन उसने शादी कर ली थी। उसकी एक बेटी थी, उसकी वाइफ थी और उसे अपनी वाइफ इतनी पसंद थी। ये सब बातें उसे दिखाई दे रही थीं। बलवंत की बातों से साफ था कि वो जल्द ही वेद को सीईओ बनाने वाला था। वो इस वक्त बैठना नहीं चाहता था, मगर रमेश मेहरा ने उसे उठने से मना कर दिया था। रीना वहीं हाल में खड़ी हुई हर चीज़ हसरत की निगाहों से देख रही थी। उसके नसीब में कुछ भी नहीं था, ना पति का प्यार था ना औलाद का सुख। उसकी माँ भी उससे ज़्यादा उसकी छोटी बहन करीना को चाहती थी। वो पूरे परिवार के बीच में भी बहुत अकेला महसूस कर रही थी, मगर फिर भी भागकर सभी काम की जिम्मेदारी निभा रही थी। उसके अंदर क्या था सिर्फ वही जानती थी। चलो बच्चों, अब कमरे में जाओ, वेदिका ने सभी बच्चों से कहा। वे सभी थके हुए थे, अब जाकर रेस्ट करो। वेद, मानवी, सुधीर और रुचिका अपनी जगह से उठने लगे। तभी सुधांशु ने कहा, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? वो देखिए सीढ़ियों पर क्या है। असल में किया और सिया बैठे हुई थी। उनका नेक चाहिए, फिर एंट्री मिलेगी। आ जाओ तुम दोनों नीचे, क्या चाहिए तुम लोगों को, वेद ने पूछा। दोनों उठकर नीचे आ गए। बस भाई, ज्यादा नहीं, मुझे डायमंड के टॉप्स चाहिए, किया ने कहा। और सिया, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी कुछ भी चलेगा, मगर गिफ्ट तो जरूर चाहिए। आज हमारा दिन है, बहनों को गिफ्ट दिए जाते हैं। दोनों बहनें खड़ी थीं। वेद ने अपनी मॉम की तरफ देखा। उसकी मॉम मुस्कुराई और दो बॉक्स वेद के हाथ में पकड़ा दिए और दो बॉक्स सुधीर के हाथ में। दोनों भाइयों ने दोनों बहनों को वो गिफ्ट दिए। अब आप लोग जा सकते हैं, दोनों ने कहा। अभी नहीं, दीपक कहने लगा। दोनों भाइयों को भाभियों को उठाना होगा, फिर ऊपर एंट्री मिलेगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मानवी जल्दी से बोली। मगर वेद ने मानवी को कंधे पर उठा लिया और सुधीर ने भी मुस्कुराते हुए रुचिका को उठाया। दोनों भाई उठाकर जा रहे थे। सुधीर ने तो रुचिका को बाहों में उठाया हुआ था और रुचिका की बाहों सुधीर के गले में थी। वेद ने मानवी को कंधे पर उठा लिया था। मानवी उसके गले से चिपक गई थी, पीछे सबको देख रही थी जो मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। अवनी मॉम डैड के आगे आगे चल रही थी। वो बहुत खुश थी। आगे जाकर अवनी ने दरवाज़ा खोल दिया और वेद ने मानवी को लाकर बेड पर बिठा दिया। बोलो, तुम दोनों को अपना कमरा पसंद आया, वेद ने अवनी और मानवी से पूछा। मानवी भी उस कमरे को देखती रह गई। बहुत बड़ा कमरा था। बालकनी की तरफ पूरी कांच की दीवार थी, जिससे बाहर लॉन दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमरा विशाल और भव्य था। अंदर कदम रखते ही महत्वपूर्ण लग्जरी का एहसास हो रहा था। दीवारों पर हल्की सुनहरी रंगत और आधुनिक पेंटिंग्स कमरे को एलिगेंट लुक दे रही थी। बीच में बड़ा आलीशान बिस्तर था, जिस पर नरम रेशमी चादरें और कई कुशन सजाए हुए थे। बिस्तर के पास साइड टेबल्स पर सोने और कांच का मिश्रित लुक देने वाले लैंप थे। फर्श लकड़ी के पॉलिश किए हुए टुकड़ों से बना था, जिस पर आलीशान कारपेट बिछा हुआ था। दीवारों पर हल्की रोशनी वाली शेल्फ्स थीं, जिनमें किताबें और सजावटी आइटम्स रखे हुए थे। एक कोने में आरामदायक सोफा और कॉफी टेबल थी, जहां बैठकर बाहर के नज़ारों का मजा लिया जा सकता था। कमरे में हवादार और खुला माहौल था, लेकिन एक तरफ प्राइवेट एरिया और स्टोरेज की सुविधा भी थी। इस कमरे में हर चीज मेटिकुलसली डिजाइन की गई थी, ताकि रहने वाला व्यक्ति न केवल आराम महसूस करे, बल्कि एक तरह का शाही और लग्जरी अनुभव भी हासिल कर सके। सुधीर ने भी रुचिका को कमरे में जाकर उतार दिया। कितना वेट है तुम्हारा, मुश्किल से लेकर आया हूँ, सुधीर ने उसे कहा। इतना वेट भी नहीं उठाया जाता, तुमसे एक्सरसाइज करने का क्या फायदा, रुचिका भी कहाँ कम थी। अब मुझे थोड़ी पता थी कि उठाना होता है, सुधीर ने कहा। तो क्या सचमुच तुमने किसी लड़की को नहीं उठाया, गर्लफ्रेंड को तो बहुत उठाते होंगे। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सुधीर ने देखकर कहा। कैसे मालूम? अरे यार मत मानो, मैं तो बस वैसे ही बता रहा था, सुधीर भी वहां बेड पर बैठ गया। फिर उसने रुचिका की तरफ देखा। अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ, कहाँ, रुचिका जल्दी से बोली। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए सुधीर कमरे से निकल गया। वेद भी मानवी और अवनी को छोड़कर नीचे आ गया। असल में वो चाहता था कि मानवी भी कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए वो जानबूझकर ज्यादा देर तक कमरे में नहीं रुका। आज आर्यन राजवंश के टेंडर खुलने वाले थे, जिसमें विक्रांत कपूरिया भी भाग ले रहा था। सभी टेंडर खुलने का इंतजार कर रहे थे। अंदर टेंडर खुलने वाले थे और बाहर हाल में सभी बैठे हुए थे। वहां कई कंपनियों के मालिक भी मौजूद थे। विक्रांत और उसकी वाइफ जैसिका आर्यन राजवंश को देखते हैं और फिर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। आर्यन का मूड उन्हें देखकर बेहद खराब हो गया। तभी जगत वहां आता है। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो, जगत राठौर ने आर्यन राजवंश से कहा। अभी टेंडर खुलेगा, पता चल जाएगा किसे मिलेगा। विक्रांत कपूरिया और उसकी वाइफ जैसिका उनके साथ थी। उनका एक असिस्टेंट था और एक हिस्सेदार भी। उन्हें टेंडर को लेकर बेहद घबराहट हो रही थी। आप अपना मूड मत खराब करो, हमें ही टेंडर में लेकर ऐसे घबराइए मत, जैसिका अपने हस्बैंड से कह रही थी। वहीं उसका हिस्सेदार भी परेशान था कि टेंडर का क्या होगा। इतने में वहां पर लिस्ट लग जाती है कि टेंडर किस कंपनी को मिला। वहां जाकर देखा जाता है कि सबसे पहले आर्यन राजवंश की कंपनी का नाम था। जगत और आर्यन मुस्कुराते हुए साइड हो जाते हैं और उनके साथ के आदमियों ने मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। विक्रांत और उसकी वाइफ लिस्ट देखते हैं और उनका मूड बेहद खराब हो जाता है। वे हाल से बाहर आ जाते हैं। मुझे पता है इन्होंने पैसे खिलाए हैं, हमेशा टेंडर इन्हें ही क्यों मिलता है, ये पैसे की वजह से मिलता है। वे लोग विक्रांत और जगत दोनों को भला बुरा कहने लगते हैं। इस दौरान जैसिका विक्रांत से कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी आर्यन बाहर आता है, वो जा रहा था, जगत अभी अंदर था। जैसे ही आर्यन गाड़ी के पास पहुंचा, विक्रांत वहां आया। तुमने ये पैसे के दम पर हासिल किया है ना, मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, विक्रांत गुस्से से बोला। अपनी जबान संभालो, हम अपने काम के दम पर टिके हैं, समझे, धोखा देना हमारी आदत नहीं है, आर्यन भी गुस्से से बोला। दोनों एक दूसरे से हाथापाई होने लगते हैं। तभी कोई अंदर जाकर जगत को बताता है कि आर्यन और विक्रांत में लड़ाई हो गई। जब तक जगत अपने आदमियों के साथ भागता हुआ अंदर आता है, दोनों को हटाता है। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, चलो आर्यन चलते हैं, वो कहता है। विक्रांत की वाइफ जैसिका जगत के पास आती है। हम दोनों भी भाई बहन हैं, कभी तुम मुझसे बात तो लिया करो, हमेशा तुम इसी का साथ देते हो, जैसिका ने जगत से कहा। मगर जगत तो उसकी बात को इग्नोर करते हुए आर्यन के साथ ही गाड़ी में बैठ जाता है और चले जाते हैं।
वहां पर पीछे केवल विक्रांत कपूरिया और उसकी वाइफ रह गए थे। विक्रांत गुस्से से बोल रहा था, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। चलो विक्रांत, घर चलते हैं, जैसिका विक्रांत को गाड़ी की तरफ खींचते हुए ले जाने लगी।